जय माँ। हम लोग श्री माँ के जीवन, उनकी प्रार्थना और ध्यान में उनके संस्मरण, उनके अनुभव, उसके आधार पर उनकी प्रार्थनाएं, उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से आती हैं। एक तो जिसको हम जीवन कहते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग लिखेंगे अपने जीवन के बारे में, तो क्या लिखेंगे हम? मेरे जीवन में ऐसा हुआ, वह मिला, उसने ऐसा कहा, ये प्राप्त हुआ, ये अवार्ड मिला, वो चीज़ मेरे हाथ से चली गई। लेकिन इन प्रार्थनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन प्रार्थनाओं में पूरा का पूरा आंतरिक जीवन, ये इसको माता जी कहती है रिवर्सल ऑफ वैल्यूज। रिवर्सल ऑफ वैल्यूज क्या है कि वे चीज़ें, इसको श्रीमद् भगवद गीता में भी बड़े स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जिन चीज़ों में लोग जिसको दिन समझते हैं उसको एक योगी रात के समान समझता है, एंड वाइस वर्सा। तो वे चीज़ें जो हम लोगों को साधारणतः सुख देती हैं, एक योगी उसमें रमता नहीं है, रहता है उसमें लेकिन रमता नहीं है। दोनों में अंतर है। रमना मतलब मन उसमें उलझा हुआ है, और वे चीज़ें जिनके प्रति हम लोग रात समझते हैं कि नहीं है, एक योगी का जीवन उसमें जागृत रहता है वो। और ये चीज़ हम देखते हैं श्री माँ की जब प्रार्थना और ध्यान पढ़ते हैं, इतने वर्षों की डायरी है उसे माँ नहीं बता रही हैं कि, और जबकि उनका बाहरी जीवन बहुत कठिन था। ऑफकोर्स कई कुछ पर्सनल चीज़ें जो उन्होंने इस डायरी में से फाड़ के जला दी हैं, परंतु कुछ कुछ हम लोगों को आभास मिलता है जब काफ़ी देर 60s की बात है, जब माता जी संस्मरणों में बात बात में कहती हैं कि मेरे लगभग जन्म से ही ये चारों असुर किसी ना किसी रूप में मेरे पास थे। वे जिनके साथ उनका विवाह हुआ है वो अपने आप में मिथ्यात्व का असुर है। कैसा जीवन होगा, क्या होता होगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वे चीज़ें, ऐसा नहीं कि जो एक योगी होता है वो इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंस एक स्टेज है, ये बार बार श्री कृष्ण भी बताते हैं, श्री अरविंद भी बताते हैं कि समता एक बाहरी चेतना का इंडिफरेंस, जब हम पढ़ते हैं समालोष्ट कांचना, सब चीज़ें बराबर उससे देखता है, ये एक स्टेज है। जो रियल समता है वो स्पिरिचुअल समता है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक समता का जो ध्येय होता है एक स्प्रिंग बोर्ड बनाना, ताकि भगवान की विल का पूरा प्रकटन हो सके। मतलब जो हमारी मूल्यांकन होता है चीज़ों का, ये रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बदल जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि माँ की व्यथा, माँ की पीड़ा, और तब समझ आता है कि राम की व्यथा कैसी होगी, माता सीता की व्यथा कैसी होगी। कुछ कुछ हिंट मिलती हैं, राधा और श्री कृष्ण किस भाव से गुजरे होंगे, ये चीज़ें लिखी नहीं हैं इस तरह से, लेकिन तब हम लोगों को कुछ हिंट मिलता है। कई चीज़ें जो नहीं लिखी होती हैं लेकिन हुई होंगी, कई बार मैं सोचता भी हूँ कि क्या संवाद हुआ होगा श्री राम और माता सीता के बीच में परित्याग के पहले। ऐसा तो नहीं हुआ होगा जैसे कि भई उन्होंने परित्याग कर दिया, और कुछ संवाद हुआ होगा उनकी जो डीपेस्ट बॉन्डिंग है। क्या संवाद हुआ होगा राधा और श्री कृष्ण में, क्या हुआ होगा जो जीवन में घटित हुआ होगा उन सबके जो इस अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं, और कैसे वैल्यूज़ बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं, ये हमको देखने में मिलता है श्री माँ के जीवन में। कि जब श्री माँ पौंडीचेरी से आ रही हैं तो वो एक हार्श सॉलिट्यूड की बात करती हैं। कहाँ आ रही हैं? अपने घर आ रही हैं, पेरिस आ रही हैं, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद टोक्यो जाती हैं, हालांकि इम्पर्सनली जब वो टोक्यो को डिस्क्राइब करती हैं तो बाहरी सौंदर्य की बात करती हैं, पर ये भी कहती हैं कि आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। कहती हैं वो जापान के बारे में, भौतिक सौंदर्य है लेकिन आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। तो जब जापान जाती हैं तो वो प्रार्थना में एक जगह लिखती हैं डेजर्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मरुभूमि है। अब सोचिए, लोग तो जाते हैं घूमने के लिए, उनको वो मरुभूमि लग रही है। एक बार श्री अरविंद से मिलने के बाद पूरे जीवन की सभी वैल्यू अब उसी एक आधार पर टंग जाती हैं कि उनसे बिछो दुख है, उनके साथ जब वो एक वो महत् कार्य जिसको करने के लिए, और वो केवल भाव, वो कोई भावनात्मक दुख नहीं है, वो महत् कार्य जो दोनों को साथ करना है, जिसके लिए धरती तैयार नहीं है, जिसके लिए सारे विश्व की शक्तियां खड़ी हो गई हैं उसको रोकने के लिए। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं 1914 से 15 के बीच में माँ लगभग प्रारंभ कर देती है नई सृष्टि। श्री अरविंद रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में उनकी ऑटोमेटिक राइटिंग है 1914 की, जिसमें श्री अरविंद दिखते हैं कि काम कब कंप्लीट होगा। ऑटोमेटिक राइटिंग है तो वो हम ये टेक्निकली नहीं कह सकते हैं कि श्री अरविंद ने लिखा, लेकिन उनके थ्रू लिखा हुआ। वो कहते हैं 1956-1957 क्वेरी, और वो कहते हैं कि शीघ्र ही समाप्त होगा, मतलब ये 40 इयर्स इज नथिंग देखा जाए तो, ये मेंशनड है। तो वो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, धरती के लिए कर रहे हैं, लेकिन धरती से उनको क्या मिल रहा है? कांटों का हार, डाउट्स डाउट्स डाउट्स, अभी तक डाउट्स। तो ये सब के बावजूद, तो ये जो उनके दुख का कारण जिसमें वो गुजरती हैं, ये पदचिन्ह हैं, और कैसे वो मार्ग प्रशस्त करती हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। बाहरी जीवन में क्या क्या हो रहा है उसकी बात माँ नहीं करती, वो नहीं चाहती हैं। एक सावित्री में एक लाइन है, बुक 1 कैंटो 2 में भी है और बाद में बुक 8 में भी आती है, कि सावित्री अपनी पीड़ा, क्योंकि ये सावित्री को पता चल गया है कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। किसको पता है? सावित्री को पता है, नारद मुनि को पता है, अश्वपति को पता है, और उनकी वाइफ को पता है मेनली, वो किसी को नहीं बताती है। एक जगह शेरविन दिखते हैं, एज वन हु अनविटिंगली कैरीज द रेस कैरीज द बर्डन ऑफ ए ब्लाइंड रेस। उनको पता ही नहीं है कि हमको कहां ले जाए, आपको ट्रस्ट पे चलना है, लोग मना कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो उनको लेके जा रही हैं। तो ये भगवान की पीड़ा है, भगवान की समस्या है, बुद्ध के मन में क्या घटित हुआ होगा। हम लोग इन चीज़ों को बड़े एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देते हैं कि अरे वो गए, उसकी पीड़ा किसी ने नहीं, जो जिसके हृदय में पूरे विश्व की पीड़ा है उनको कैसी पीड़ा हुई होगी? निश्चित रूप से पीड़ा हुई होगी, लेकिन वो पीड़ा कैसी है उसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। वही पीड़ा से माँ गुजरती हैं, और फिर हम देखते हैं कि एक बदलाव है 1915 उनके जाने के बाद उनके डायरी नोट्स में। किस तरह का बदलाव है मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन खुद ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1914 में जो उनकी, और उसके पहले, जैसे एक बहुत अंदर में जो अभिप्सा का जो एक प्रचंड ज्वाल है, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके ऊपर एक हल्का सा एक मेघा छन्न हो गया है, डाउट्स के कारण नहीं, किंतु वो अवस्था जिसके थ्रू वो गुजर रही हैं, एक क्षण को भी डाउट नहीं है कहीं पर भी, लेकिन वो मेघा छन्न सा हो रहा है, जैसे कि बढ़ना मुश्किल हो गया है पर बढ़ती जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम लोग के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेशन नहीं वैसी होती है जैसी प्रारंभ में है, या बीच बीच में डिम होती है, तो क्या करना चाहिए? फिर भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए, इवन मैकेनिकली हमको स्मरण करना चाहिए। ये दिखता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। श्री अरविंद, उसी समय की बात है 1915-16, माता जी को उनकी चिट्ठियां हैं जिसमें वो लिखते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसी सिचुएशन प्रतीत हो रही है, ऐसी अवस्था जो ट्रेंच वारफेयर के समय होती है। ट्रेंच वारफेयर में क्या होती है कि एक तरफ एक की लाइन है, दूसरी ओर एनिमी लाइन। तो ट्रेंच वारफेयर में दोनों, इसको कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। अगर आप बॉर्डर पे एकदम आगे चले जाओगे तो वहाँ दोनों बंकर में ट्रेंचेस में बैठे हैं, अगर ये आंखें उठाते हैं तो वो देख सकता है कि उधर वाला आंख, जो बॉर्डर फील्ड में दिखाया भी था, ये रियल चीज़ है कि यू कैन सी। तो अब क्या है, आप बढ़ नहीं सकते हो, तो आप ट्राई करते हो बट यू कांट, वो जो हम लोगों ने डोकलाम और इस सब में हुआ था, यू कांट। तो वैसी सिचुएशन में शेरविन कहते हैं कि मानो पूरी सृष्टि रिवोल्ट कर रही है और एक एक इंच ग्राउंड आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसा होता है साधना में, कई बार होता है कि शेरविंद एक जगह कहते हैं कि 6-6 महीने उनके अंदर कोई वो अवस्था आ गई थी, लेकिन उस समय भी वो बढ़ती जाती हैं, एक एक इंच ग्राउंड, एक एक सेंटीमीटर। यानी कहते हैं ना, कभी आप घड़े को नहीं भर सकते बहुत आराम से, तो उसमें एक एक बूंद डालते रहिए। ये चीज़ भी इसमें देखने को मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो मार्ग खुलता है, कैसे कैसे कुछ एक अनुभव होते हैं जो बड़े अद्भुत हैं। इस मार्ग से चल के ही सब गए हैं। एक जगह श्री अरविंद बताते हैं ऐसे ऑन द गीता में कि ये जो विश्व रूप दर्शन है, ये इसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि विश्व रूप दर्शन में केवल भगवान का बड़ा सुंदर है, डिलाइटफुल है, वो तो है, लेकिन महाविनाशक भी हैं, उस बिल्कुल जिसको हम देखना नहीं चाहते, आंखें बंद करना चाहते हैं, वो भी चीज़ें भगवान के अंदर हैं। और जो उसको नहीं देखना चाहता है वो फिर समग्रता के लिए तैयार भी नहीं है। हम जोड़ सकते हैं वैसा संबंध कि नहीं नहीं हमको अपना थोड़ा अच्छा अच्छा सब दिखाइए, लेकिन देन वी आर नॉट रेडी फॉर दी कंप्लीट विश्व रूप। ये श्री अरविंद इसमें एसेज ऑन द गीता में स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को यह विश्व रूप क्यों मिलता है। तो हम लोगों ने पिछली बार मार्च की प्रार्थनाएं पढ़ी थी। एक कारण जो हम लोग देखते हैं कि माँ की वो अंदर की जो अभिप्सा है उसके अंदर एक चेंज देखते हैं, उसका कारण ये है, बहुत बाद में माँ ये बतलाती हैं, कहती हैं कि जब वो पांडिचेरी से गई श्री अरविंद से मिलने के बाद, तो उन्होंने अपनी चैत्य सत्ता को यहाँ छोड़ दिया। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट डू दिस, पर माँ सुप्रीम ऑकल्टिस्ट भी हैं, उन्होंने चैत्य सत्ता को यहाँ छोड़ दिया था। और उसके कारण जैसे ही वो यहाँ से जाती हैं और काम, वो जो वार से जो लोग आ रहे थे उनका देखभाल करना, सबको काम में चलाना, वाहन को चलाना, केयर करना, ये सब काम करती हैं माँ, तो उनकी पूरी नर्व्स बहुत पेन में, शी हैड अ वेरी सीरियस इलनेस, क्योंकि वो अपनी चैत्य सत्ता को यहाँ छोड़ के चली गई थी। तो ये भी इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है। और माँ बताती हैं, April 19th, 1915, ऑल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, गिविंग द डायरेक्ट लाइट टू द ड्रीम ऑफ द आइडियल विच सॉट टू बी लिव्ड इवन इन मेटीरियल एक्टिविटीज ऑफ आइडियल। अब देखिए कि जड़ जगत के छोटे छोटे काम में भी, छोटी छोटी चीजों में भी सब कुछ दिव्य को प्रकट करना है, ये तो आइडियल है। और वो पांडिचेरी आने के बाद, श्री अरविंद से मिलन के बाद, ये सब कुछ स्वतः ही हो रहा था। अब लेकिन जब वो वहां जाती हैं, नाउ देर इज ए डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, लाई, क्यों? क्योंकि वो जो आधार है वो नहीं मिल पा रहा है, आधार जो है वो यहीं पर रह गया है। तो वो देखती हैं, लेकिन उसको वो किस तरह से इंटरप्रेट करती हैं। कई बार ये जीवन में होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को पाते हैं जो बिल्कुल विपरीत लगती हैं, और उस समय हमको धैर्य के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कि जेल भी तुम हो और जेल से मुक्ति भी तुम हो, बंधन भी तुम हो और बंधन से मुक्ति भी तुम हो, और जब तुम चाहोगे प्रभु तो आप किसी भी समय क्षण भर में सारे बंधन काट सकते हैं। तो माँ ऐसे कहती हैं, दी आर हैज नॉट येट कम फॉर दी हैप्पी रियलाइजेशन इन दी आउटर फिजिकल फैक्ट। वो रियलाइजेशन के लिए जो साथ चाहिए, आउटर फिजिकल फैक्ट, दी फिजिकल बीइंग इज प्लंज्ड अगेन इन टू द डल एंड मोनोटोनस नाइट फ्रॉम विच इट वॉन्टेड टू प्रीमेच्योरली टू एक्सट्रिकेट इट सेल्फ एंड दाई विल रियलाइज्ड होल लॉर्ड ऑफ ट्रूथ कम्स टू से टू द कंस्ट्रक्टिंग माइंड टू प्रीमेच्योरली। वो कह रही हैं कि मैं तो वो शुरू प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, जो हम लोग पढ़ते हैं पहले नई सृष्टि का, इवन हमें ऑनेस्टी सोसाइटी प्रारंभ हो गई, न्यू आइडिया प्रारंभ हो गया, आर्य प्रारंभ हो गया, और उन्होंने अंदर ही अंदर नई सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो माँ कहती है इट इज़ टू प्रीमेच्योर, वो इसको इस तरह से देखती हैं। तो कोई भी बैक स्लाइडिंग जिसको हम कहते हैं वो हमेशा टेम्पररी होती है, हम लोग उसको परमानेंट समझते हैं, लेकिन परमानेंट तो केवल और केवल भगवान और उनका आकर्षण और वो नियति है। बैक स्लाइडिंग्स आर ऑलवेज टेम्पररी। यही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे विश्वामित्र ऋषि की कहानी, इट्स ए क्लासिक एग्जाम्पल। दुर्वासा ऋषि पर अप्लाई नहीं करती है, कहीं कहीं नहीं आता कि वो शांत स्वभाव के हो गए, जित क्रोधीय नहीं थे, विश्वामित्र जितेंद्रिय नहीं थे, लेकिन जब हम देखते हैं उनका, कई बार उनके जीवन में ऐसा होता है कि वो गिरते हैं उठते हैं, ये उनकी ग्रेटनेस है, टिल ही रियलाइजेस द हाईएस्ट, ब्रह्म ऋषि का उनको। तो किसी भी फॉल बैक को कभी भी परमानेंट नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो अब मैं तैयारी करूं, कोई चीज मैं भूल गया हूं, कोई चीज लेनी है। जगत जननी माँ खुद बता रही हैं, तो कहती हैं कि ये प्रीमेच्योर है। तो लॉर्ड ऑफ ट्रूथ उनको उस समय क्या कहते हैं, जब आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, आपके अंदर एक आइडियल है कि मान लीजिए कि ये योग मैं करना चाहता हूं, ये जीवन में यही मेरा लक्ष्य है, कॉल आ गई योग के लिए। तो कई लोगों के अंदर ये प्रश्न आता है कि अब आश्रम में तो ठीक है, एक तरह से ये सच है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस कि चारों तरफ से वो वातावरण है और आप झट से थोड़ी पीड़ा हुई आप समाधि के पास चले गए। इट्स ए ग्रेटेस्ट ऑफ प्रिविलेजेस, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन होता है जीवन में व्यक्ति कोई कॉरपोरेट सेक्टर में फंसा हुआ है और वहाँ पे वो नहीं चाह के भी ऐसे वातावरण में है जहाँ वो कहीं भी अपने आप को सपोर्टेड नहीं पाता है। जो यहाँ पर आदमी अगर थोड़ी सी भी एस्पिरेशन हो तो वन फाइंड सपोर्टेड। तो द लॉर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य की दृष्टि है, वो क्या कहती है, माँ को कह रही हैं, यू कैनॉट कंसीव दैट इट इज ट्रू एंड येट इट इज। वे परिस्थितियां जो कह रही हैं, अरे डायरेक्ट लाई, मेरे आंतरिक अभिप्सा से इसका कोई संबंध नहीं है, कह रहे हैं इसमें भी सत्य छिपा है। यानी माइंड के आपके सारे सिस्टम्स, थॉट, स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन, उसके परे जाके देखना है। द माइंड इज रिकॉग्नाइज्ड विद गुड ग्रेस इट्स एरर एंड मेड इट्स परफेक्ट सरेंडर टू ऑल दैट दाउ विलेस्ट। The vital being is quietly satisfied in all circumstances. The feelings live in an equal and pure peace. The whole being is flooded with thy vast eternal light. Thy love penetrates and animates it. यहां तक वो कहती ये तो स्थापित हो गया है, माइंड को अपनी भूल पता चल गई है, हृदय पूरी तरह से भगवान के प्रेम से भगवान की माधुर्य को अनुभव करता है, उनकी डिलाइट को अनुभव कर रहा है, शांति को अनुभव कर रहा है। तो फिर बचा क्या है, अब यहां कह रही है, एंड येट द इंप्रेशन दैट द एक्सटर्नल फैक्ट इज ए फॉल्सहुड हैज नॉट बीन इफेस्ड एंड द बॉडी डिस्पाइट इट्स इनडिस्प्यूटेबल गुडविल इज सो प्रोफाउंडली शेकन दैट इट कैनॉट रीगेन द इक्विलिब्रियम ऑफ इट्स हेल्थ। ये समस्या है बाहरी जड़ जगत। अब यहां देखिए उनको, मां को एक्सट्रीम चैलेंज दिया गया है, श्री अरविंद के साथ तो झट से क्रिएट कर देंगी। अब देखिए ये जो बात माँ लिख रही है इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। दूरगामी परिणाम क्या है कि 20 से 26 के बीच में जो माँ श्री अरविंद के बीच में ये बात कि हम चलें और चल के पहले रियलाइज कर लें, रियलाइज करने के बाद इसको दे देंगे लोगों को। फिर कहती है दूसरी ओर ये था कि हम सारी कठिनाइयों को लोगों को लेके साथ चलने का मतलब है सारी कठिनाइयों को साथ लेके चलें। फिर माँ कहती हैं द डिसीजन वॉज स्पॉन्टेनियस, ये हमने विचारों के साथ नहीं लिया, ऑटोमेटिकली ये कठिनाइयां जुड़ गईं। तो उससे क्या हुआ कि हालांकि रियलाइजेशन थोड़ा सा और बाद में हो गया, क्योंकि जिस गति से श्रीमा सुप्रामेंटल एक्सपीरियंसेस है उनके 1912-10 जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, श्री अरविंद के सुप्रामेंटल एक्सपीरियंसेस, अगर वो दोनों मिलकर ये कहते कि नहीं हम पहले रियलाइज करें बाई विद इन नो टाइम मेटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चले जाते, बट दे टेक एवरी वन एंड प्रोसीड। तो वहां पर कहती हैं कि अब माँ को चैलेंज दिया गया है, नहीं अभी नहीं, अब देखें कि स्वर्ग आप कैसे क्रिएट करते हो धरती के ऊपर। अब देखिए इस दृष्टि से अगर हम माँ सीता और श्री राम की कथा को पढ़ें तो एक अलग उसके अंदर सत्य नजर आता है, प्रकट आता है। मिलके तो राम राज्य क्रिएट कर लोगे पर मिलने नहीं देंगे, अब राम राज्य क्रिएट करो। दिस द चैलेंज थ्रोन एट बोथ ऑफ देम। राधा कृष्ण की कथा में भी ये दिस इज चैलेंज थ्रोन। अब यही चीज हम देखते हैं रिपीटेड इन मदर एंड शोरबिंदोज लाइफ। माँ उसको कहती है इट्स लाइक एन अनरियल ड्रीम, ए वॉइड विच इज फुल ऑफ लाइट पीस एंड इमेंसिटी इल्यूडिंग ऑल फॉर्म एंड ऑल डेफिनेशन। पुअर वर्ड्स, वो सारी इससे मतलब अंदर में उनके वो सब कुछ है स्थापित, लेकिन जड़ जगत में ऐसे जैसे काम को एक स्पोक डाल दिया, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड ही असुरों का गढ़ है, बार बार ये महर्षि अरविंद बताते हैं। और इसीलिए रोग, डिजेनरेशन, एजिंग, डेथ, इस पर विजय पाना इज द अल्टीमेट। श्री कृष्ण इसको पहले हिंट करते हैं कि एक और कहते हैं कि ये ट्रांजिएंट चीज समझता है जो योगिन है, फिर वो कहते हैं इस पर वो मास्टरी का प्रयास करता है, फिर वो कहते हैं अल्टीमेट वो है जो इस पर भी विजय प्राप्त करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो जरा मरा मृत्यु, ये तो गढ़ है। मेटेरियल क्रिएशन कहां से निकला है? इनकॉन्शियंट से निकला है, ये जो जड़ जगत हम इसको कहते हैं। ऊपर से तो वो डिसेंडिंग वेव वॉज डिफरेंट, वो मिल के जब निकलती है इनकॉन्शियंट में प्लंज लेके, तो इनकॉन्शियंट तो एक एक घर जानती है, शरीर को छोड़ती नहीं है आसानी से। तो यहां पर विक्ट्री की समस्या है। इसी बात को मां फिर July 31, 1915 में कहती हैं। अब देखिए यहां पे कई लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं कि मां ऐसा क्यों अनुभव कर रही। इसलिए अनुभव कर रही क्योंकि उनको दोनों सत्य को, एक और वो कृपा है, दूसरी ओर वो धरती की पीड़ा, धरती की एंग्विश को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे माता सीता कुंभक से निकली थी, तो अर्थ नेचर को, अर्थ नेचर उस कुंभक में क्या था? उस कुंभक में उनका रक्त था जो ऋषियों को रावण ने मारा था। इट्स ए वे ऑफ सेइंग कि जो पीड़ा हुई थी धरती की, वो सारी पीड़ा उस कुंभक में थी। तो वो एक और धरती की पीड़ा भी है और दूसरी ओर वो डिवाइन मदर भी हैं, दोनों रोल वो प्ले कर रही हैं। तो शुड आई प्लेइंग द रोल ऑफ ए सर्वेंट एन इंस्ट्रूमेंट टर्न टूवर्ड्स दी ओ लॉर्ड एंड एड्रेस टू दी ए हिम ऑफ एडोरेशन, शुड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दी इन द इटर्नल रियालिटी एंड द इन्फिनिट ब्यूटीट्यूड एंड स्पीक टू मैन ऑफ द पीस एंड जॉय दे नो नॉट। देखिए यही हम देखते हैं कि आश्रम में जब फॉर्म होता है तो ये दोनों रोल। माँ एक जगह कहती हैं, कई लोग हैं जो मुझको एक गुरु के रूप में देखते हैं और वो मुझसे किसी मिरेकल वगैरह की कोई अपेक्षा नहीं, वो बस आप मुझे पथ दिखाइए, मैं पथ पे चलूं, कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ने मुझसे डिवाइन मदर का संबंध जोड़ा है, तो वो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि ये तो ओमनीपोटेंट है, तो सब कुछ संभव है। और माँ कहती है कि ये दोनों अपनी अपनी जगह सत्य है, ये नहीं कहती कि इट इज आइदर और, आपने कैसे संबंध जोड़ा है। तो यहां दो, एक और वो धरती की पीड़ा, धरती की ओर से एज ए सर्वेंट एडोरेशन टू द डिवाइन ताकि वो कृपा उतरे, दूसरी ओर वही तो कृपा है तो आइडेंटिफाई करके मनुष्यों को मैसेज देना है। द टू एटीट्यूड्स आर साइमल्टेनियस, द टू कॉन्शियसनेसेस आर पैरेलल एंड इन दिस क्लोज एंड इनडिसोल्युबल यूनियन इज द प्लेनिट्यूड। इसी चीज को बहुत बार अलग अलग ढंग से कहेंगी। दी मदर में श्री अरविंद इसको इस तरह से कहते हैं कि शी इज नॉट ऑल अबव, पार्टली शी वेल्स, पार्टली शी रिवील्स, शी हैज डिसेंडेड हियर इन टू द इग्नोरेंस ऑफ अर्थ नेचर। दोनों दोनों अवस्थाएं उनके साथ साइमल्टेनियस है, एक और अंदर में पूरी तरह वो डिवाइन मदर से आइडेंटिफाइड है, ब्लेस कर रही हैं अर्थ को, दूसरी ओर वो जड़ तत्व की पीड़ा से भी आइडेंटिफाइड है, अर्थ की नेचर की समस्याओं से भी आइडेंटिफाइड है। तो कहती है दोनों साइमल्टेनियस है मेरे अंदर, और उसका कारण बताती हैं। द हेवेंस हैव बीन डेफिनेटिवली कॉन्कर्ड, श्री अरविंद का ये पत्र भी है और बिल्कुल इसमें आप उसी पंक्ति को देखेंगे। श्री अरविंद का एक पत्र है माँ को, द हेवेंस वी हैव कॉन्कर्ड बट नॉट येट द अर्थ। और हेवेंस को कॉन्कर मतलब कि जो देवताओं से जो कुछ, देवताओं को ये टर्न मिल गया है, कमांड मिल गया है कि इस तरह से एक नई चीज प्रकट होने वाली है, तो दे आर वर्किंग टूवर्ड दैट हायर आइडियल्स, उसके अंदर एक नई चीज प्रकट हो गई है मनुष्य के अंदर। सो हेवेंस वी हैव कॉन्कर्ड, लेकिन उसको रियलाइज करना है जो मेटेरियल वर्ल्ड में। यही चीज हम सावित्री में भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब डेथ के साथ डिबेट है तो उसमें दो कैंटो आते हैं, एक है द हेवेंस ऑफ द आइडियल, तो वहां पे एक नए आइडियल की स्थापना हो गई है। फिर आता है वो ड्रीम ट्वेलाइट, नॉट हेवेंस ऑफ द आइडियल, सॉरी, ड्रीम ट्वेलाइट ऑफ द आइडियल, और दूसरा आता है ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। जब ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल आता है तो मृत्यु जल्दी जल्दी ले जाता है वहां से कुछ कहता नहीं है ज्यादा, बाद में कहता है पता है ये सब मैलेडी है माइंड की, देवता उल्टी सीधी बातें मनुष्य के मन में डालते रहते हैं, आई एम श्योर तुम इसको सच नहीं समझ बैठी हो, ये इमेजिनेशन है बहुत। वो इफ यू रीड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि वो शीघ्रता से वहां से ले जाता है, क्योंकि वहां पे इस तरह की बातें आने लगती हैं कि नाइट इज नॉट अवर बिगनिंग नॉर अवर एंड। फिर वो ले जाता है कहां पर, अर्थली रियल, कहता है ये भूमि देखो, बहुत लोगों ने ये आइडियल को ड्रीम किया था, रिवॉल्यूशंस हुए थे, देखो मैंने इनका क्या हश्र किया है। अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट आया था जिसमें दो दिग्गज डिस्कशन कर रहे थे कि श्री अरविंद ने तो ये सब कहा है, औरों ने भी कहा, लेकिन वो आइडियल्स, वो तो कहीं ना कहीं वो आइडिया नहीं रियलाइज हुए, तो क्या श्री अरविंद के साथ भी ऐसा होगा। द पॉइंट इज कि श्री अरविंद ने ये सब फोर्स ही किया हुआ है कि ये अर्थ पे इनको रियलाइज करने के लिए क्या करना होता है, तो वो भी हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि सावित्री में जब अंत में डिवाइन मदर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि तुम और सत्यवान आ जाओ और अनंतता में विदाउट डिसोल्यूशन शाश्वत काल, इफ यू कैन यूज दैट वर्ड, फॉर ऑल इटर्निटी आप दोनों निवास करो, तो वो कहती हैं नहीं, अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड, द फोर्ज वेयर द आर्च मेशन सेप्स इज वर्क, दाई सर्विट्यूड्स ऑन अर्थ आर ग्रेटर किंग देन ऑल द ग्लोरियस लिबर्टीज ऑफ हेवन, द हेवेंस वेयर वंस माई नेचुरल होम। कहती है मुझे स्वर्ग का प्रलोभन मत दो, मालूम है, देखा है मैंने, सब देवताओं को जानती हूँ। एक जगह माँ कहती भी है आई नो ऑल द गॉड्स इन ऑल द रिलीजन्स, सबसे मिल चुकी हूँ, एक आज जो बचे थे वो यहाँ, माँ बस सोचती थी वो प्रकट हो जाए, जैसे गणेश जी के बारे में एक बार उन्हें सोचा सच में ऐसा गॉड है क्या। उन्हें 26 तक हम देखते हैं कि सारे त्रिमूर्ति ये सब आते हैं, पर गणेश जी के बारे में वो बाद में कि इज देयर रियली, गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, बड़े सुंदर गोल्डन गणेश जी खेल रहे हैं, तो कहते हैं हाँ मैं हूँ, रियल हूँ, अच्छा मैं भी करूँगा कुछ आपके लिए। तो माता जी बताती हैं ओके क्या करोगे, मैं धन ला के दूंगा। माँ कहती है फॉर 10 ईयर्स ही केप्ट हिज प्रॉमिस, फिर सारा, तो उनके लिए सब रियलिटीज थी, हेवेंस उनको कॉन्कर करना, कॉन्कर करने का अर्थ है कि जब वो वहाँ उनकी चेतना जा रही है तो सब नतमस्तक हो रहे हैं, डिवाइन मदर हैज कम दे रिकॉग्नाइज, धरती पर तो रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो ये अवस्था है। बट द कॉन्क्वेस्ट द हेवेंस हैव बीन डेफिनेटली कॉन्कर्ड एंड नथिंग एंड नोबडी हैज द पावर टू टेक देम फ्रॉम मी। तो वो हेवेंस को कॉन्क्वेस्ट के कारण ऑलवेज पीस जॉय ये स्टेट है, इनर स्टेट उनकी ऑल द टाइम, बट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ हैज येट टू बी मेड, इट इज गोइंग ऑन इन द वेरी हार्ट ऑफ द टर्मॉइल एंड इवन वेन अचीव्ड विल स्टिल बी रिलेटिव। तो ये देखिए हार्ट ऑफ द टर्मॉइल, अब ये यहां पर हम देखते हैं कि श्री राम तो ये रावण को क्यों, लीला देखिए कैसे अनफोल्ड होती है, रावण ले जाता है, अब लगता है अरे लक्ष्मण जी ने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों चले गए, वो तो बाण मार के धर उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे ना जाने क्या कर सकते थे, ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो विजय विजय नहीं होती, एक रावण मर जाता सीता माता आ जाती, पर उनको रावण राज्य को ध्वस्त करना है, तो वहां जाके एक एक असुर मानसिकता पहले बदलते हैं, हनुमान जी ये काम कर देते हैं, सबकी मानसिकता बदल देते हैं कि हम तो सोचते थे हम अजय हैं, ये कहां से एक वानर ने आके हमको ऐसा बता दिया कि भाई हम तो अजय नहीं है। तो फर्स्ट टाइम दे मीट द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी कि हम भी वल्नरेबल हैं, और धीरे धीरे वन बाय वन, तो ये भगवान की लीला है कि वो गढ़ में जा करके हार्ट ऑफ द टर्मॉइल, भाग के नहीं, काम वहां होता है भगवान का। तो अगर कभी जीवन में ऐसा लगे कि चारों ओर अंधकार है, इसका अर्थ यह है कि अब भगवान का काम वहां पर हो रहा है, उस गहरी अंधी गुफा में हो रहा है, पर यह नहीं कि भगवान ने अपने को दूर कर दिया है या हमसे व्यक्ति कई बार निराश हो जाता है, जबकि उस समय उस महाअंधकार में, अंधकूप में भगवान का कार्य हो रहा है। तो और उनके अंदर वो सारी शक्ति वो अनुभव करती हैं। द पावर इन मी इज लाइक ए फाउंटेन स्ट्रांग एंड फर्टिलाइजिंग विच क्लैमर्स बिहाइंड द रॉक्स। वो जो रॉक है मैटर की, उसको ध्वस्त करने के लिए, लेकिन नहीं कर रही हैं। अब यहां फिर देखते हैं हनुमान जी का उदाहरण, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इनकी जो आती है नॉर्मली इट्स वेरी कि भाई हनुमान जी ने क्यों नहीं लंका जला दी थी, मार डालते तो उसके अलग अलग लोग, उनमें तो शक्ति थी एक्चुअली, वो मैजिक भी जानते थे साथा, दो चार को और तो मार ही देते, पर नहीं करते हैं वो। उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र भी हो चाहे तो असर नहीं करे। केवल इसलिए नहीं कि राम जी ने ऑर्डर नहीं दिए, वो तो एक पार्ट है, परंतु इसका मुख्य कारण है कि वो पूरी की पूरी लंका का इज ए प्रोसेस जो ध्वस्त होनी है, जिसमें एक एक व्यक्ति को अवेकिन होना है, तैयार होना है। इसीलिए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भी मैजिक करके नहीं नष्ट मार देते हैं कंस को, अवेकनिंग होती है कंस राज्य में, मथुरा राज्य में, एक आंतरिक एक कंप्लेंट कंस के प्रति, एक डिससेटिस्फैक्शन विद द वे ऑफ लाइफ। उसके बाद वो श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं और वहां जाके उसको नष्ट करते हैं पूरे राज्य को। तो दिस इज ए प्रोसेस इन ऑल दिस। तो यहां मां कहती है कि पावर तो है लेकिन उसका करेक्ट यूज सही समय पर, विच क्लैमर्स बिहाइंड द रॉक्स एक्यूमुलेटिंग इट्स एनर्जीज टू ब्रेक डाउन द ऑब्स्टेकल एंड गश फोर्थ फ्रीली टू द एक्सटीरियर पोरिंग ओवर द प्लेन टू फर्टिलाइज इट। व्हाट विल बी द आवर ऑफ इट्स इमर्जेंस व्हेन द मोमेंट विल कम इट विल लीप फोर्थ। ये भी आता है ना कि माँ के अंदर तो शक्ति थी, हाँ माँ कहती है तो क्यों नहीं वो रश करी थी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी होता, सब समाप्त हो जाता, ये नहीं करना चाहती। और ये जगह जगह माँ के, जब हम एजेंडा में उनकी कन्वर्सेशंस पढ़ते हैं तो जगह जगह ये बात आती है। और एक जगह और कहती हैं कि डिवाइन लव के साथ है रूपांतरण की शक्ति, लेकिन मनुष्य को थोड़ा तैयार होना है, नहीं तो पूरा पूरी सृष्टि ब्लेजेज में चली जाएगी, इतना पावरफुल है डिवाइन लव। फिर वो उदाहरण देती हैं कि साधारण सा मानवीय प्रेम तुमको जंप करने को विवश कर देता है, डिवाइन लव की अगर शक्ति आए, प्रचंड शक्ति, तो मनुष्य का क्या हाल होगा। फिर एक बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी प्रार्थना है। अब ये सब मेटेरियल चेतना से उनके योग से कनेक्टेड है, क्योंकि अब दैट इज द फील्ड। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डिवोटेड टू पुटिंग इन ऑर्डर सम फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, क्या कर रही हूँ, चीजों को संभाल रही हैं, कबर्ड्स अरेंज कर रही हैं, घर में व्यवस्था कर रही हैं। एज ए स्ट्रांग ब्रीज पासिस ओवर द सी एंड क्राउन्स विथ फोम इट्स इन्यूमरेबल वेव्स, सो ए ग्रेट ब्रेथ पास्ड ओवर द मेमोरी एंड अवेकेंड अ मल्टीट्यूड ऑफ रेमिनिसेंसेस, इंटेंस कॉम्प्लेक्स क्राउडेड द पास्ट लिव्ड अगेन इन ए फ्लैश, लूजिंग नथिंग ऑफ इट्स सेवर नो पार्ट ऑफ इट्स रिचेस। मेरी अपना ये सोचना है कि जब वो यहाँ पर थी और सारी उन्होंने व्यवस्था संभाल ली थी, वो पास्ट लाइक ए रेमिनिसेंस लाइक ए स्ट्रांग बीज, वो कहीं गया नहीं है, विलुप्त नहीं हुआ है, वो वहाँ पर अपनी जगह पर है। फिर वो युद्ध की विभीषिका और उसके बारे में लिखती है, इनका सीमा का एक बहुत सुंदर वर्णन है युद्ध के बारे में, जापान में वो उसके बारे में कहती हैं। और वो बताती हैं कि हमको लगता है पर्सनालिटीज, हमको लगता है कि जेलेंस्की, पुटिन, वो ट्रंप या ये वो सब इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब ये युद्ध होते हैं तो ये रुद्र और काली की शक्तियां कार्य करती हैं, ह्यूमन बींग्स आर लाइक फ्लाइज, ये वो उसमें डिस्क्राइब करती हैं। वो तो उठा के आहुति, और वो जब वर्णन होता है रुद्र वीरभद्र जब पहुंचते हैं दक्ष के यज्ञ में, तो यहां तक सिचुएशन आ जाती है कि जब वो आह्वान करते हैं विष्णु भगवान, आपने तो हम मुझे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, कहते हैं हाँ प्रॉमिस किया है करूंगा, लेकिन तू प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, सामने, बट यू डोंट नो इस समय जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उसके पीछे जो महत संकल्प है, तो मूर्ख है जो मेरा आह्वान करके सोच रहा है तो बच जाएगा, नहीं बचेगा, बट आई विल स्टिल डू. सो देर आर टाइम जब इतनी ट्रेमेंडस फोर्सेस कार्य करती हैं, मानव आकलन के बहुत परे की ये फोर्सेस होती हैं, और इसको हम सतही दृष्टि से नहीं समझ पाते हैं. बांग्लादेश, अरे ये क्या हो गया, जो छिपा था वो निकला, अंदर में था पाकिस्तान प्रेम या जो भी कहें, वो निकलेगा, निकल के शमन होगा. आप किसी चीज को अंदर छिपा करके, दबा करके, ऊपर एक अच्छी सी पट्टी करके, घाव है अंदर में, लगता है ना पट्टी बांध के सब ठीक हो गया, नहीं, अंदर में है, खोलोगे और टच करोगे तो पीड़ा देगा, उसका इलाज होना, इलाज होने के लिए पट्टी को बार बार खोलना पड़ता है. कभी कभी हम लोग बोलते हैं डेली ड्रेसिंग, ऑल्टरनेट डे ड्रेसिंग. तो ये टाइम टू टाइम अंदर जो घाव है उसको वो कुरेदा जाता है, निकलता है, फिर अंत में उसका शमन होता है जब वो पूरी भूमि भर जाती है. इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो माँ कहती है, दिस सॉरोफुल वर्ल्ड नील्स बिफोर दी ओ लॉर्ड इन म्यूट सप्लिकेशन. दिस टॉर्चर्ड मैटर नेसल्स एट दाई फीट इट्स लास्ट इट्स सोल रिफ्यूज एंड सो इम्प्लोरिंग दी इट अडोर्स दी Thee whom it neither knows nor understands. Matter के अंदर dumb cry of matter. माँ कहती है कि कठिनाई क्या है, material world change क्यों नहीं होता है. कहती है कि matter को अब तक जो evolutionary process हुई है उसको tremendous forces ने उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ी है. वो change नहीं होता, इतना hard substance है, धीरे धीरे change होता है. अगर हम देखें living कैसे बनता है, फिर mind कितने, तो मैटर के अंदर ग्रेस का कंसेप्ट नहीं है. मैटर केवल ये कि मुझे ब्लो पड़ेगी, मुझे इधर से ओले पड़ेंगे, मुझे, तो इट डजंट हैव ए नेचुरल फेथ इन ग्रेस, इट डज नॉट नो ग्रेस. तो बंद होता है, इसलिए बहुत पीड़ा कष्ट के द्वार से गुजरता है. पर यहां मां मैटर को कुछ सिखा रही हैं. इट्स प्रेयर राइजेज लाइक द क्राई ऑफ वन इन ए लास्ट एग्नी. That which is disappearing feels confusedly the possibility of living again in thee. The earth awaits thy decree in a grandiose prostration. Listen, listen. Its voice implores and supplicates thee. ये भी कुछ लोग होने चाहिए. सब लोग बांग्लादेश में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, सब माइंड एनालाइज कर रहा है, उसके पीछे भागे जा रहे हैं. कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो यज्ञ करें, आवाहन करें भगवान की संकल्प का पृथ्वी के ऊपर, और वो बहुत पावरफुल होता है. हम लोग देखते हैं जब श्री राम रावण से युद्ध कर रहे हैं तो अगस्त ऋषि आइसोलेशन में चले जाते हैं, आह्वान कर रहे हैं उन शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का, ताकि श्री राम की विजय हो. तो यह भी आवश्यक है कि कुछ लोग उस समय कुछ लोग ही, हैंडफुल इज एनफ, कि हे भगवान माँ तेरी जय हो, तो उस भाव से हम लोग जुड़ें. What will be thy decree? What is thy sentence? O Lord of truth, the individual world blesses thy truth which it knows not yet, but which it calls and to which it adheres with all the joyful energy of its living forces. Ab jagah jagah maa truth ko implore kar rahi hai. Battle ke andar sides ne truth ko, jab Bharatvarsh aur 71 ka war ho raha tha, तो माँ से उदार जी ने पूछा कि कोई कुछ मंत्र दीजिए भारत के लिए सुरक्षा. तो माँ ने क्या मंत्र दिया? सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ. युद्ध में केवल ट्रूथ को इम्प्लोर, ट्रूथ की विक्ट्री, किसी साइड की विक्ट्री नहीं. ये बहुत अद्भुत प्रेयर है, और देखा जाए तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन भी है उपनिषद का वाक्य, सत्य में विजयते नान्यतम, अंततः विजय सत्य की ही होती है. लेकिन ये वो वाला सत्य नहीं है जो मेरा सत्य है, तुम्हारा सत्य है. सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रुथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रुथ. तुम्हार लॉर्ड ऑफ ट्रुथ को इम्प्लोर कर रही है. डेथ हैज पास्ड वास्ट एंड सॉलेम एंड ऑल फेल इनटू अ रिलीजियस साइलेंस ड्यूरिंग इट्स पैसेज. A superhuman beauty has appeared on the earth. ये कौन सी superhuman beauty है? उसकी बात माँ अपने संस्मरणों में जो कहती हैं कि जब वो देखती हैं कि जो मृत्यु की विभीषिका से बाहर आ रहे हैं, वे जो वुंडेड हैं और वे जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। माँ देखती है कि ये तो वास्तव में हवि की तरह यज्ञ को चढ़े हैं और इनके कारण नई सृष्टि की संभावना। अब ये सुपर ह्यूमन ब्यूटी कौन सी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वर्ड। ब्यूटी का अल्टीमेट क्या है, जहां आप फॉर्म ये सब आहुति दे देते हो। ब्यूटी अपने ओरिजिन में फॉर्मलेस है, हम ब्यूटी को फॉर्म के साथ एसोसिएट करते हैं। कौन थे ये लोग जिन्होंने पूरी तरह से अपना आवाहन कर दिया यज्ञ के अंदर। ये तभी होता है जब ये महाज्वाल उठती है युद्ध की। तो एक्चुअली अगर आप वार की स्टोरीज पढ़ें तो वन फील्स अ सुपर ह्यूमन ब्यूटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक ऐसा परम सौंदर्य प्रकट होता है धरती पर जब हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी पूरे उसको यज्ञ रूप में दे दिया घटोत्कच। सो ये जो आहुति होती है उससे सुपर ह्यूमन ब्यूटी, वह सौंदर्य जो धरती पर प्रकट नहीं हुआ, फॉर्म के भी परे है, वो प्रकट होता है, क्योंकि वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस से प्रकट होता है, यज्ञ में पूरा अपने को अर्पित करके होता है। तो माँ वो देखती हैं कि जब वो यज्ञ में ये सारे सोल्जर जा रहे हैं तो वो सुपर ह्यूमन ब्यूटी प्रकट हो रही है। और एक जगह इसके साथ एक छोटी सी ह्यूमरस सी घटना भी है कि इसमें प्लेग्राउंड में माँ का म्यूज़िक या कुछ लगाते थे इस तरह का, सुनीलता का म्यूज़िक मेडिटेशन के लिए। एक बार ना जाने जान के या अनजाने में एक म्यूज़िक किसी ने लगा दिया जो फ्रेंच का एक गाना है, जिसमें गाना है, अब गाना जो भी है, गाने में जो सोल्जर जा रहे हैं और उनकी जो प्रेम करती हैं वो उनको विदा कर रही हैं। अब लोग, कई लोग मेडिटेशन नहीं हुआ, उन्होंने कंप्लेन की माँ को कि देखिए लोग हैं, क्या हो गया, इन्होंने इस तरह का गाना लगा दिया। माँ कहती व्हाट्स रॉन्ग विद द सॉन्ग, इट्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स ए सॉन्ग व्हेन सोल्जर्स आर गोइंग फॉर द सैक्रिफाइस, द विमेन हु आर देयर दे आर सिंगिंग। अब देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते व्हाट ए वाइडनेस। माँ उसमें क्या देख रही है, वो भी तो एक त्याग है, एक यज्ञ है, प्रेम की पराकाष्ठा है। ऑल सेक्रीफाइस कैरीज ए स्पिरिचुअल पावर इन इट, श्री अरविंद का वर्ड है। ऑल सेक्रीफाइस ऑफ लव इवन एट ए ह्यूमन लेवल इट कैरीज अ स्पिरिचुअल पावर इन इट, सिंथेसिस ऑफ योग में वो बताते हैं। तो और ये सबसे गुजरते गुजरते फिर माँ का एक अनुभव होता है। देखिए पूरा ये मेटेरियल क्रिएशन में उनका योग चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर माँ है इस समय, वो आंतरिक एक्सपीरियंसेस उनकी बात नहीं कर रही हैं, वो मेटीरियल क्रिएशन के साथ जुड़ के लॉर्ड ऑफ ट्रूथ का आवाहन कर रही हैं, सुपर ह्यूमन ब्यूटी को प्रकट होते देख रही हैं, उसकी पीड़ा से अपने को आइडेंटिफाई कर रही हैं, सप्लीकेट कर रही हैं, अर्थ को कॉन्कर करने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। एज ए रिजल्ट एक अद्भुत अनुभव होता है। और उस अनुभव के बारे में जब माँ इस अनुभव को बताती हैं तो श्री अरविंद कहते हैं ये ओरिजिनल वेदों का अनुभव है, लेकिन मॉडर्न इंटरप्रेटेटर जो हैं वेदांत इत्यादि के वेदों के, वो इसको कभी स्वीकृति नहीं देंगे। और वो अनुभव क्या है, पृथ्वी का भगवान के साथ, सुप्रीम के साथ मिलन। क्योंकि प्रेयर तो उनकी यही चल रही है, जड़ तत्व तो पीड़ित है पृथ्वी की अवस्था, तो अब क्या करती है माँ, समाहित होके पृथ्वी को ही ऊपर उठा ले जाती है सुप्रीम की ओर। जैसे हम लोग के साथ होते हैं, हम लोग तो कहाँ उठ सकते हैं, तो माँ हम लोगों की चोटी पकड़ के, गर्दन पकड़ के ले जाती है। अब वो पूरी पृथ्वी को भूभार हरण, ये भी एक अंदाज है, ये कहीं नहीं मिलती है। November 26, 1915 द एंटायर कॉन्शियसनेस इमर्स्ड इन डिवाइन कॉन्टेम्पलेशन, द होल बींग एंजॉयड ए सुप्रीम एंड वास्ट फेलिसिटी। Then was the physical body seized, पूरे शरीर को मानो किसी ने अधिकृत कर लिया। यहां seized पकड़ना नहीं होगा, अधिकृत। First in its lower members and next the whole of it by sacred trembling which made little by little even in the most material sensation all personal limits fall away। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कुंडलिनी का, लेकिन ये अनुभव जो ट्रेडिशनल कुंडलिनी है उससे भिन्न है। कुछ चीजें समानताएं, यहां मां ये नहीं कहती कि मूलाधार से अवेकनिंग हो रही है, माँ कहती है द लोअर मेंबर्स, तभी वो बाद में कहती है 12 चक्रों की बात करती हैं, शी ऑलरेडी न्यू, एकदम पाताल के अंदर भी जो ऊर्जा छिपी है, जड़ तत्व की ऊर्जा को उठाना, ये तो शैल बाला, ये फर्स्ट स्टेप, ये ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग है, उसके नीचे जो ऊर्जाएं हैं उसकी तो बात ही नहीं होती है। यहां वो पाताल के नीचे जो छिपी है, पाताल गंगा, उसको सर्ज करा रही हैं, जो वहां पर सोए हुए हैं द डिवाइन बीइंग, उस शक्ति को बाहर ले आ रही हैं, वो जो मारतंड के रूप में वेदों में जिनकी कहानी है, यहां उसकी बात हो रही है। सो इट इज नॉट जस्ट द कुंडलिनी एक्सपीरियंस बट समथिंग मच ग्रेटर। और अब हालांकि देर आर सम पैरेलल्स, तो वो सीधा विश्व चेतना में प्रवेश कर जाती हैं, पर्सनल लिमिट्स फॉल अवे, द बींग प्रोग्रेसिवली मेथोडिकली ग्रू इन ग्रेटनेस, ब्रेकिंग डाउन एवरी बेरियर, शैटरिंग एवरी ऑब्स्टेकल, एक एक लेयर पर जो बेरियर्स आते हैं भौतिक लेवल पर, प्राण के लेवल पर इत्यादि आती, प्राण के भी जितने लेवल हैं, माइंड सब पर, दैट इट माइट कंटेन एंड मैनिफेस्ट ए फोर्स एंड ए पावर विच इंक्रीज सीजलेसली इन इमेंसिटी एंड इंटेंसिटी। वो परम शक्ति जो नीचे से निकल रही है सारे वर्ल्ड्स को अपने अधिकार में ले रही है। इट वॉज एज इफ ए प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ द सेल्स, सेलुलर योग भी हो रहा है साथ में, अनटिल देर वॉज ए कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन विद द अर्थ। उनकी एक एक सेल्स पार्थिव जगत की चेतना से पूरी तरह आइडेंटिफाइड हो गई है। पार्थिव जगत के अंदर जितने भी वर्ल्ड्स हैं, वाइटल, मेटीरियल, फिजिकल, मेंटल, इन सबको के साथ उन्होंने स्वयं को आइडेंटिफाई कर लिया है। हर बॉडी हैज बिकम द बॉडी ऑफ द अर्थ, द बॉडी ऑफ द अवेकेंड कॉन्शियसनेस वॉज द टेरेस्ट्रियल ग्लोब मूविंग हारमोनियसली इन इथीरियल स्पेस। श्री कहते हैं सात भू हैं, सेवन इमोर्टल अर्थ्स, तो अब वो सबसे आइडेंटिफाई करके, अब वो जैसे पृथ्वी घूम रही है, मतलब ये सब धरती पर हो रहा है वार, लेकिन पृथ्वी से पूछिए, कहते मैं तो घूम रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ सूर्य के, हारमोनियसली। अब ये उनका एक्सपीरियंस देखिए, हारमोनियसली इन स्पेस, एंड द कॉन्शियसनेस न्यू दैट इट्स ग्लोबल बॉडी वॉज दस मूविंग इन द आर्म्स ऑफ द यूनिवर्सल पर्सनैलिटी। पृथ्वी से अगर कोई पूछे कि वो जो वार हो रहा है ना यूक्रेन रशिया में, कहती है हाँ हो रहा है, उसकी पीड़ा मुझे है, लेकिन मैं तो सूर्य की परिक्रमा कर रही हूँ, और सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, किसकी कर रहा है, अल्टीमेटली यूनिवर्सल स्पिरिट, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो परमा जननी, एंड इट गेव इट सेल्फ, इट अबैंडन इट सेल्फ टू हर इन एन एक्सटेसी ऑफ पीसफुल ब्लिस। अब पूरी पृथ्वी स्वयं को माँ के माध्यम से समर्पित कर देती है। देन इट फेल दैट इट्स बॉडी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एंड वन विद इट। अब नेक्स्ट लेवल पर पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, पूरे ब्रह्मांड, अब देखिए विश्वरूप का वर्णन है ये, लेकिन ये विश्वरूप के भी परे जाएगा, ये अनुभव बहुत अद्भुत है। देन इट फेल दैट द बॉडी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एंड वन विद इट, द कॉन्शियसनेस बिकेम द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स इन इट्स टोटैलिटी, इमोबाइल इन इट्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, मूविंग इन्फिनिटली, क्योंकि एक एक कण जो मूव कर रहा है वो उनकी चेतना के अंदर मूव कर रहा है। द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स स्प्रैंग टुवर्ड द डिवाइन इन एन आर्डेंट एस्पिरेशन। अब देखिए कहां कहां से वो ले जा रही है पृथ्वी को, सुप्रीम, ट्रांसेंडेंट। तो तीन लेवल, एक भूलोक, ओम भूर भुव स्व तत् सवितुर वरेण्यम, सी इज टेकिंग टू द अल्टीमेट सन, लेकिन उसके भी परे ले जा रही है। या श्री अरविंद की गायत्री, उसमें तो आवाहन है तत् सवितुर वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि, पर कहां ले जा रही है वो, सूर्य लोक, वील हैव टू वेट। ए परफेक्ट सरेंडर, एंड इट सॉ इन द स्प्लेंडर ऑफ द इमेक्युलेट लाइट द रेडियंट बींग स्टैंडिंग ऑन ए मेनी हेडेड सर्पेंट हुज बॉडी कॉइल्ड इन्फिनिटली अराउंड द यूनिवर्स। ये आदित्य हृदय, रेडियंट स्प्लेंडर, इमेक्युलेट लाइट, इमेक्युलेट लाइट इज द ओरिजिनल लाइट, वो ले गई सूर्य, जो डिस्क ऑफ सन जो ऊपर है, सहस्रार आप कह दीजिए, और वो सरपेंट, हम लोग जानते हैं कि काल की गति को वो कंट्रोल करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग कि काल की गति को चंद्रमा और सूर्य से कनेक्ट करते हैं हम लोग, काल की गति, वह जो उसके ऊपर एक रेडिएंट बीइंग की तरह वो उसके ऊपर विराजमान है। तो एक तो विष्णु हम देखते हैं कि जो काल के हृदय में, जो शेष नागर अंत शेष, जो काल की गति है, अनकॉइलिंग जो रही है उनके हृदय में विष्णु भगवान, अभी वो भी आएंगे एक नए रोल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काल की गति के परे वो परम सूर्य, तो वहां वो ले जाती है। द बींग इन एन इटर्नल जेस्चर ऑफ ट्रायम्फ मास्टर्ड एंड क्रिएटेड एट वन एंड द सेम टाइम द सर्पेंट एंड द यूनिवर्स दैट इशूड फ्रॉम इट। यही तो है हमारी शेषनाग की, कि उनके ऊपर पृथ्वी है और जब ये अपना फन बदलते हैं तो पृथ्वी की गति, एक हजारों फन है, एक एक फन से पृथ्वी, एक एक वो टाइम कीप चेंजिंग। देखिए कितनी सुंदर ये, लेकिन वो क्या देखती हैं वहां पर कि वो ही डोमिनेटेड, ही डोमिनेटेड इट विद ऑल हिज विक्टोरियस माइट एंड द सेम जेस्चर दैट क्रश द हाइड्रा एनवेलपिंग द यूनिवर्स गिव इट इटर्नल बर्थ। हु इज ही? द रेडियंट बीइंग ऑफ इमैक्युलेट लाइट, वह जो परम सूर्य, वो काल की गति को, देखिए सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस की बात होती है, टाइम ओबेज, अगर आपको टाइम को बदलना है तो यू हैव टू रीच देयर और चेंज हियर। चेंज भी कैसे? यहां जो सुपरमाइंड छिपा हुआ है, देयर इज नो अदर वे, तो काल की गति। देन द कॉन्शियसनेस बिकेम दिस बीइंग, अब वो उनसे भी आइडेंटिफाइड हो गई है पूरी तरह। Then the consciousness became this being and perceived that its form was changing once more. It was absorbed into something which was no longer a form and yet contained all forms, something which immutable sees the eye, the witness. जो वेदों में विष्णु भगवान का डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह का है, आई एक्सटेंडेड इन हेवन, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, साइमल्टेनियस सीइंग। और वो सींग केवल सींग नहीं है, वो क्रिएट करती जा रही है साथ साथ। एंड व्हाट इट सीज इज देन दिस लास्ट वेस्टिज ऑफ फॉर्म डिसअपियर्ड एंड द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ वाज एब्जॉर्ब्ड इनटू द अनटेरेबल द इनएफेबल। ये है सुप्रीम एक्सपीरियंस। ये मां समाधि में जाके नहीं हो रहा है उनको, शी इज कॉन्शियस ऑफ ऑल दिस साइमल्टेनियसली। तभी तो श्री अरविंद कहते हैं कि यू हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऋषिज ऑफ द उपनिषद्स एंड द वेदास, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस यू डोंट फाइंड डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। द रिटर्न टुवर्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी टुक प्लेस वेरी स्लोली इन ए कॉन्स्टेंट एंड इनवेरिएबल स्प्लेंडर ऑफ लाइट एंड पावर एंड फेलिसिटी एंड एडोरेशन बाय सक्सेसिव ग्रेडेशंस बट डायरेक्टली विदाउट पासिंग अगेन थ्रू द यूनिवर्सल एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह का वर्णन एक लेवल से, अल्टीमेट से नहीं, परंतु नारद जब आते हैं अशुपति के पास तो श्री अरविंद वो पंच तत्वों की भूमि से उतरते हुए आते हैं, एथरिक सी से आते हैं, इसका वर्णन है। ये सब चीज़ें सत्य हैं और चूंकि हम इसको सत्य नहीं मानते, हम डिस्कवर नहीं कर सकते। अगर हम इसको सत्य मानेंगे यानी फेथ के आई से, देन वी विल डिस्कवर इट। और ये इसमें सीक्रेट है, पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड की सीक्रेट है इसके अंदर। एंड इट वॉज एज इफ द मॉडेस्ट कॉर्पोरियल फॉर्म हैड बिकम द डायरेक्ट एंड इमीडिएट वेस्चर विदाउट एनी इंटरमीडियरी ऑफ द सुप्रीम एंड इटर्नल विटनेस। अब वो देखते हैं कि ये जो उनकी देह है वही सीधा सुप्रीम की वो दृष्टि जिसमें वो जो देखती है वही सत्य होता है। कितनी अद्भुत बात है, व्हाट इट सीज इज, जो उन्होंने देखा वही सत्य है, वही सत्य है। तो ये अद्भुत अनुभव के साथ, इसी अनुभव के बारे में श्री अरविंद का एक पत्र है जहां वो लिखते हैं कि ये एक अद्भुत अनुभव है, ये सत्य है जो तुमने देखा, लेकिन इसको जो आज मॉडर्न वेदांतिंस इसको स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि पृथ्वी और सुप्रीम ये कैसे हो सकता है? आप शरीर के बाहर जाके अब देखिए कुंडलिनी से कितना अंतर है। ये नहीं है कि चेतना आपकी चली गई वहां पे यूनाइट हो गई, सहस्रार में जाके ब्लिस में जाके वो समाधिस्थ हो गई, निर्विकल्प समाधि। मां सब कुछ लेके जा रही है, इंक्लूडिंग द एंटायर वेकिंग कॉन्शियसनेस, द तभी तो वो एक्सपीरियंस को इतने क्लियरली नोटेशन दे रही है। वो ये भूमि छोड़ के नहीं जा रही है वहां, पहला डिफरेंस तो ये है। पहला तो ये कि एकदम नीचे से प्रारंभ हो रहा है जागरण। दूसरा, वो इस जगत को छोड़ के नहीं जा रही है कि वेकिंग के पीछे ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम के पीछे प्रज्ञा, उसके बाद वो ये सब लेती हुई जा रही है, इसको एक करती जा रही है। मेटेरियल वर्ल्ड की एक एक सब कुछ वो अपने सेल्स डायलेट करके ले लेती हैं, फिर वो मेटेरियल बॉडी की पूरी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक करती हैं, उसके बाद उसको सुप्रामेंटल और उसके परे काल की गति ऑल थ्रू वो पृथ्वी को लेकर के जाती हैं, छोड़ के नहीं जाती हैं। ये एक्सपीरियंस किसी कुंडलिनी जागरण में नहीं आता है। और ये सब माँ अपने एक इशारे मात्र से हम सबको दे सकती हैं। ये नहीं कि हमको इनको चाहना चाहिए, लेकिन यदि वे चाहें, क्योंकि ये सब उनके अधिकृत है। एक छोटी सी कहानी है, जब अमृता और ये तीन लोग पढ़ रहे थे द लाइफ डिवाइन, और किसी ने, माँ जा रही थी तो उन्हें ऊपर जा रही थी शेरविन के कक्ष में, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, मदर वी आर रीडिंग लाइफ डिवाइन। अच्छा क्या पढ़ रहे हो, मदर वी आर रीडिंग द चैप्टर ऑन ब्राह्मण, लेकिन मदर वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सारी माने उनके सिर पर एक नॉक किया, वो ब्रह्म चेतना में चले गए विद इन मोमेंट्स, तीनों के सिर पे नॉक चली गई माँ। आधे घंटे बाद आई उधर ट्रांस में, माँ उनको वापस बुलाती है, कहती यू नो माई चाइल्ड, आई कैन गिव ब्रह्मन कॉन्शियसनेस लाइक दिस टू यू, बट दैट इज नॉट अवर वर्क हियर। कि चेतना को छोड़ के आप ऊपर में, आपने अनुभव किया, बड़े प्रसन्न हो गए, दैट इज नॉट द वर्क इज टू bring the Brahman here, awaken here, transform here. उनका शरीर सृष्टि की देह बन गया है, और उनकी शरीर से जब हम लिंक होते हैं उनके फॉर्म से, इसीलिए बार बार शेरविन कहते हैं हाँ डिवाइन मदर हैं, यूनिवर्सल मदर हैं, वर्ल्ड मदर हैं, कहते हैं ये फॉर्म है, ये स्पेशल है। दैट्स वाई बार बार वो बताते हैं कि इस इल्यूजन में मत रहना कि हाँ वो तो है डिवाइन मदर हैं, वो कैसे भी हम कहाँ भी खुल लें, दिस फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म उनका इसी प्रयोजन से बना है, और इस फॉर्म के अंदर वो घटनाएं घटित हुई हैं और होंगी, होती रहेंगी। और जो सी माँ की इस फॉर्म से कनेक्ट होता है, उसके अंदर ये योग अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। शी इज द गोल्डन की। जय माँ।